श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद भाग एक अध्याय दो, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, श्लोक क्रमांक 31। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम् द्युमन् भवार्णवम् भीमम् अदभ्रसौहृदाः भवत् पदाम्भोरुह नावमत्रते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्। खुद आप समुत्तीर्य पार करके सुदुस्तरम दुर्लंघ्य द्युमन अज्ञान के इस लोक के अंधकार में सूर्य के समान चमकने वाले हे प्रभु, भवार्णवम संसार सागर को, भीमम भयानक अदभ्रसौहृदाः भक्तगण जो पतितात्माओं के प्रति सदैव मैत्री भाव रखते हैं, भवत पदाम्भोरुह आपके चरण कमल नावम पार करने के लिए नाव को इस अत्र इस संसार में ते वे वैष्णव जन निधाय पीछे छोड़कर याताह चरम लक्ष्य वैकुंठ सद अनुग्रह भक्तों पर सदैव कृपालु तथा दयालु भवान आप। अनुवाद। हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार कर रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्य गण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा दयालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण का यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर लें। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्र अनुमोदित भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी ने परवर्ती भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें छापे जिससे लोग भगवत कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे चार पाप कर्मों से बचें। ये है अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रामाणिक आदेश हैं। क्योंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं, अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल न करके इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्तुत विधि विधानों का पालन करते हैं उन्हें कृष्ण भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है। और यदि पालनकर्ता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा के गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसलिए कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलामता। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रामाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत गाया है, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास जनमे जनमे होए अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भव सागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुना तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण सिन्धु दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमो तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धु पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैतं गदा सिवासदिनो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पिछले डेढ़ महीनों से काफी भक्तों ने बड़ी प्रामाणिकता से प्रयास किया श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को इस दिसंबर मैराथन के दौरान वितरित करने में। मुझे बताया गया कि लगभग 3000 पुस्तक वितरित हुए और बंबई से 8 भक्त यहाँ आए हुए थे और हमारे ब्रह्मचारी भी उनके साथ गए हुए थे। उन्होंने कोल्हापुर और आसपास के गांवों में 5300 पुस्तक वितरण किए। तो 8300 पुस्तक तो कम से कम कोल्हापुर वासियों के हाथों में गया है। तो सबसे पहले आप सब भक्तों को जिन्होंने डायरेक्टली वितरण किया और जो जिन लोगों ने इनडायरेक्टली उन्हें मदद किया प्रेरणा देकर या अलग तरीके से सहायता देकर, उन सबको कोल्हापुर इस्कॉन की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। ये पुस्तक है क्या, जिन पुस्तकों को हम बांट रहे हैं ये पुस्तक है क्या, क्यों बांटना चाहिए और बांटने का मतलब क्या है सचमुच में। ये जो सुंदर श्लोक है, यहां देवतागण भगवान श्री कृष्ण जो देवकी मां के गर्भ में स्थित थे उनकी स्तुति करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। और यहां पहले श्लोक की चर्चा करते हैं। स्वयं समुत्तीर्य, स्वयं मतलब खुद, समुत्तीर्य मतलब पार करके। तो महान आचार्य जो हैं वो इस भव सागर को भवार्णवम, भव अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र, भव मतलब भव सागर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। इस भौतिक संसार को सागर की तुलना क्यों दी जाती है? क्योंकि सागर बहुत ही विशाल होता है, इसका अंत दिखता नहीं है आंखों को, और यहां हमेशा लहरें आकर लपेट ऐसा जोर जोर से उसे मारती रहती है। इस तरह से ये भव सागर जो है, इस सागर में ये लहरें क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो इसमें सब डूब रहे हैं, सब डूब के मर रहे हैं। तो भव सागर भवार्णवम, और ये भवार्णव को दो और शब्दों से विवरण किया गया है। और ये कैसा भवार्णव है? भीमम की जो भयानक, कभी कभी आप पूर्णिमा के दिन जाओगे समुद्र के पास, जो लहरें बहुत बड़ी होती है और बहुत ही तीव्र होती है, भयानक होती है। तो भीमम और सुदुस्तरम, दुस्तर मतलब पार कर पाना मुश्किल, सुदुस्तर मतलब बहुत ही मुश्किल। तो ऐसा समुद्र जो भयानक है और जो पार कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बार मैं कॉलेज में था तो कॉलेज के बच्चों के साथ इधर गया था केरला, और वहां से हम लोग समुद्र के तट पर गए थे, और वहां ऐसी थोड़ा उत्साह होता है कॉलेज समय में, थोड़ा उत्साह होता है, उमंग होता है, और थोड़ा एडवेंचर करने की इच्छा रहती है। तो हमने एक छोटे छोटे नाव होते हैं, ऐसा छोटे छोटे नाव बस, बोट, और जिसमें मछुआरे ऐसे जाते, ऐसे एक एक दो करके अंदर जाते हैं, मछली पकड़ के लाते। तो उसको हमने कुछ पैसा दे दिया और बोला तू इधर ही रह, हमको बोट दे दे, हम जाएंगे अंदर। तो हाँ कुछ तो बोल रहा था, बोला वो कुछ मलयाली में बोला, क्या बोला नहीं समझा, हमने पैसा ले लिया, पैसा दे दिए और हम लोग निकल गए। और चलते 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 घुस गए हम लोग अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आया। और ऐसे ऐसे आधे घंटे तक अंदर जा रहे थे, और आधे घंटे के बाद ये करीब 2 बजे दोपहर को लिया था हम लोगों ने, एक घंटा गए हम लोग अंदर। जाने के बाद फिर वो दोनों जो लकड़ी होता है जिसको ओर बोलते हैं, ऐसा ये हाँ क्या बोलते हैं उसको, बल्ला, बल्ले, हाँ, तो उसको हमने बोट पे रख के लेट गए सब लोग। चलो आकाश को देखो, समुद्र को देखो, हवा का आनंद लो। पता नहीं आधा घंटे आराम कर रहे थे सब लोग। उसके बाद फिर उठ के बोले अभी वापस जाएंगे। 4 बज रहा था वो, तो 4, 4:30 हो गया था, बोले अभी वापस जाते हैं। तो फिर चलाने लगे, पर किस दिशा में जाना पता नहीं लगा, क्योंकि वो तट नहीं दिख रहा था, चारों ओर कहीं भी तट दिख नहीं रहा है। तो 2 मिनट पहले हवा, आसमान, समुद्र, लहरें, आनंद, बहुत आनंद आ रहा था, पर अभी वही समुद्र ऐसा लग रहा था मानो निगलने आ रहा, राक्षस जैसे भयानक लगने लगा। क्यों? क्योंकि बोले अभी किधर जाने का, कौन चलाने के लिए किस दिशा में जाना तो मालूम होना चाहिए ना, तो चारों ओर पानी 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 और एक नाव नजर नहीं आ रहा है। कोई दूसरा दिखा तो कुछ तो चिल्लाएंगे, कुछ नहीं। पहली बार मृत्यु क्या होता है, डर लगने लगा अगर कहीं ऐसी छूट गए तो। और हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग पूल में किसी ने फेंका तो ऊपर उठ के आने का तैरना आता है, पर कभी हमने समुद्र में तैरा नहीं और इतना इतना दूर तैरा तो कभी नहीं। तो दूसरे को पूछा पोयना इधर का माला ये नहीं, किसी को नहीं आता। पहली बार भय आने लगा और फिर भी हम लोग कुछ तो कर रहे थे, बोले करते रहेंगे कहीं तो अटली जा रहे हैं, पर जितना जा रहे बाद में डर आ गया, बोले नहीं उसको भी उठा लिया हमने, क्योंकि पता नहीं अगर उल्टे दिशा में जा रहे तो जितना दूर जाएंगे उतना आना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत भयानक लगा और फिर जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगा और भी डर होने लगा, क्योंकि ज्यादा पानी, वही पानी जो ऐसा लग रहा था बहुत आनंद है वही डर। सौभाग्यवश उस समय वो एक नाविक उधर से आ रहा था, वापस आ रहा था कि जा रहा था नहीं मालूम, पर वो हमारे पास आ गया था। तो उसको हम लोगों ने कपड़ा निकाल के क्या क्या डांस किया, जल्दी देख लो भाई इधर देखो हमको। और वो आया, कुछ तो पूछा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, बोला उधर तट पे जाना है, तट पे जाने का है। ऐसे कुछ तो हम लोगों ने बताया। तो फिर हम बोला ऐसे चलो, हमको वो जहां जा रहा था हम जा रहे, हम प्रार्थना कर रहे थे वापस जा रहा है वो। और किसी तरह से बाद में थोड़ा तट नजर आया, इतना आनंद आया मानो पूरे, मतलब अगर कोई करोड़ों करोड़ों रुपए का भी लॉटरी लग जाए तो उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद वो तट को देख कर आया। वाह, भगवत धाम जाने का आनंद उतना ही वही मिल गया। अगर आदमी मर रहा है, मरते आदमी को करोड़ों रुपया सामने रखो तो क्या फायदा उसको, पर उसको अगर जान मिल गया, जान में जान आ गया तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो भीमम भवसागर में जिसको लक्ष्य नहीं मालूम, जीवन का लक्ष्य क्या है नहीं मालूम, तो किस दिशा में जाएगा वो। अरे दिशा में जाने के लिए मालूम तो होना चाहिए ना। अगर आप कोल्हापुर में गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी रोक के किसी को पूछो अभी बाएं जाऊं कि दाहिने जाऊं, क्या बोलेगा वो, कुठे जाना तुम्हाला, तुम जाना किधर है, नहीं 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 तुम मेरे को बोलो बाएं जाऊं कि दाएं, अरे तू जाना किधर है बता पहले, तब मैं बताऊंगा बाएं जाना है कि दाएं जाना है। तो लक्ष्य के बिना किधर जा रहे हैं हम लोग। 99.9999% लोगों को लक्ष्य क्या है नहीं मालूम, और हर बार हर साल में लक्ष्य बदलता है उनका। आज लक्ष्य क्या है, बच्चों को पूछो मैं पायलट बनूंगा, बाद में 10वीं के बाद क्या बनेगा, डॉक्टर बनूंगा। क्यों, वो पायलट बनने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है और 98% वो तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में मेरे को, तो पायलट वो हवा में बहुत हो गया, अभी डॉक्टर बनूंगा। फिर 12वीं के बाद पूछा अभी क्या बनने का है, नहीं अभी और इंजीनियर बनूंगा। क्यों, वो डॉक्टर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है। फिर 12वीं के एग्जाम पास होने के बाद अभी क्या कर रहा है, अभी बीएससी कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि 35 आया इसमें एडमिशन मिल गया। पर उसके बाद पूछो अभी क्या कर रहा है, अभी बोलो आधा कमा लूंगा तो बस चलेगा, थोड़ा पैसा बच गया ना, इतना कमाई में 4 रुपया बचा लिया तो बहुत काफी है। 20 साल में आदमी सोचता है मैं पूरा दुनिया को परिवर्तन करूंगा, 40 साल के बाद बोलता है पगार में अगर 5 रुपया बचा लिया ना बहुत काम हो गया। तो किसी को लक्ष्य नहीं मालूम तो दाएं जाएंगे बाएं किधर जाएंगे। भीमम सुदुस्तरम, फंस गए, बुरी तरह से फंस गए, सब जा रहे इसलिए जा रहे, किधर जा रहे नहीं मालूम। पर ये जो महान आचार्य हैं स्वयं समुत्तीर्य, बड़ी आसानी से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समाश्रिता, इवन दशम स्कंद में बाद में आता है, समाश्रिता ये पदपल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम। भवसागर जो है गाय के बछड़े के खुर में जो पानी इतना छोटा बन जाता है, बड़े आसानी से पार कर पाते वो लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भगवान के चरण कमलों के नाव का आश्रय लिया है। पद पल्लवम प्लवम, प्लवम का मतलब है नाव, पद पल्लवम प्लवम समाश्रिता, जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों के नाव का आश्रय लिया है, उन लोगों के लिए ये भाव सागर जैसे एक छोटा बच्चा एक छोटे से नाला को पार कर जाता है, छोटी सी नाली को पार कर जाता है, ऐसे पार कर लेते बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य मालूम है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है साध्य मालूम है और साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी मालूम है, इसीलिए वो पार कर जाते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। गुरु परंपरा में जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय, प्रेष्ठ मतलब बहुत ही प्रिय, भगवान को बहुत ही प्रिय है वो। क्यों? विष्णुपादाय, पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का मतलब क्या? भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का मतलब है भगवान की अहैतुकी अप्रतिहता शुद्ध भक्ति करना, क्योंकि यही एक तरीका है जो पार कर पाता है भवसागर को, और कोई तरीका नहीं है। केवल भक्ति, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्त्या तु अनन्य, अनन्य भक्ति, कर्म ज्ञान योग इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति करके आचार्य गण इस भवसागर को जो भीमम सुदुस्तरम भयानक है और दुर्लभ, क्या बोलते हैं भगवान भी गीता में कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंति ते, तो पार कर जाते हैं। पार करने के बाद अदभ्र सौहृदाहा, पर उनका एक खास लक्षण, उनका लक्षण क्या है? अदभ्र सौहृदाहा, सौहृदा मतलब सुहृदम, भगवान है ना, सुहृदम सर्वभूताना, सुहृद मतलब बहुत शुभचिंतक, शुभचिंतक। कैसे शुभचिंतक? अदभ्र, अदभ्र मतलब शाश्वत शुभचिंतक, दो दिन के शुभचिंतक नहीं। आज तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा शुभचिंतक, तू मेरा पीठ खुजला, मैं तेरा खुजलाऊंगा, जिस दिन तू बंद किया मैं भी बंद। इस भौतिक संसार में शुभचिंतक ऐसे होते हैं, पर अदभ्र, प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को चिट्ठी लिखते थे उसके अंत में लिखते थे यू आर एवर वेल विशर, यू आर एवर विल विशर, आपका सदैव शुभचिंतक, शाश्वत नित्य शुभचिंतक, मतलब तुम कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो फिर भी उसकी भलाई चाहना। अदभ्र सौहृदाहा, तो ये स्वभाव होने के कारण भले वो पार कर जाते हैं पर उनकी चिंता रहती है, मैं तो पार कर गया पर इन लोगों का क्या। जैसे प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव को कि प्रभु, नरसिंह देव बोले आ जाओ भगवत धाम आना है क्या, मांगो काय पाजे तुला भगवत धाम आता तुझा घेऊन जाणार। बोले नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे निकाला नारद मुनि उनकी सेवा को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं, जब तक ऐसा व्यक्ति रहेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, सबको भेज के बाद में मैं आऊंगा। सो अदभ्र सौहृदाहा, तो क्या करते हैं वो, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम अवदभ्र भवत पदाम्भोरुह नावम। भवत मतलब आपके चरण, हे द्युमन, हे कृष्ण सूर्य समान, सूरज के समान चमकने वाले प्रभु, भवत पदाम्भोरुह, अम्भोरुह मतलब कमल, अंबुज, अंबु अंबु मतलब पानी, ज मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला यानी कमल। अंभोरुह भवत पद अंभो, आपके चरण कमल, नावम अत्रते, तो वो तो चरण कमल का आश्रय लेके पार कर गए। निधाय याता, जिस नाव को पार कर गए, जिस नाव को आश्रय लेके पार कर गए, उस नाव को वापस हमारी ओर छोड़ के जाते। ऐसा नहीं कि वो पार छोड़ के जाएंगे, इस पार में छोड़ के जाते। इस पार में कैसा पहुंचा दिया वो, इतना लंबा सागर है तो, क्योंकि उन्होंने सागर को एक छोटा बना दिया और इसी जगह पे रख के चले गए वो। हम जैसे लोगों के लिए पार करने के लिए तरीका छोड़ के गए। निधाय, निधाय मतलब छोड़ के जाना, निधाय याता। वो गए, वो तो आराम से पार कर गए, पर हमारे लिए नाव छोड़ गए। कौन सा? भवत पदाम्भोरुह नाव, आपके चरण कमल, यानी आपकी शुद्ध भक्ति कैसे करना है। निधाय याता, और सद अनुग्रहो भवान, और आप इतने दयालु हैं प्रभु, क्योंकि भगवान के भक्तों ने ये नाव को छोड़ा है। भक्त बड़े कृपालु हैं, हमारे शुभचिंतक होने के कारण हम लोगों के लिए छोड़ के गए। उस नाव को जो भी आश्रय लेता है, भगवान बोलते हैं मेरे भक्त ने छोड़ा है ना, बड़े विश्वास के साथ छोड़ा है, और ये बड़े विश्वास के साथ उसका आश्रय लिया है, तो अब मेरी जिम्मेदारी होती है, वो नालायक क्यों ना हो, क्योंकि ये नाव का आश्रय लिया है, अब मेरी जिम्मेदारी उसको जबरदस्ती ले जाऊंगा वापस, क्योंकि पूरे आश्रय, पूरे विश्वास के साथ वो आश्रय लिया है। इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु नाव छोड़ के जाते हैं, कृष्ण उसको पार कराते हैं। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण का नैया, पार कराने वाले वो, सिर्फ उनके चरण कमल को पकड़ लो वो पार करा देंगे, और चरण कमल को देने वाले गुरु, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आप बोलेंगे प्रभु जी किधर है वो चरण कमल, किधर लटक रहे वो, कहां है वो, किधर रखा है भगवान ने चरण कमल बताओ। कश्मीर में रखा है तो अभी जाऊंगा, कोल्हापुर में कहीं रखा है क्या, कोई एरिया में? इधर ही रखा है, देखिए आपके बगल में डब्बे भर के रखा हुआ है। ये नाव क्या है प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं, ये नाव है ये पुस्तक, ये पुस्तक जो है ये नाव है। क्यों, कैसे नाव है ये? क्योंकि इसमें बताया गया है किस तरह से भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए, किस तरह से भक्ति करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप फिसल के बोट से नीचे गिर जाओगे, क्या करना चाहिए जिससे टिके रहोगे, भले कितना भी तूफान आए छोड़ना मत ये बोट को, पकड़ के रखना। तो ये जो नाव जो है ये शुद्ध भक्ति का तरीका है। प्रभुपाद जी लिख रहे भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ, ये आचार्य संप्रदाय में आया हुआ जो योगदान है, खास करके आचार्य संप्रदाय में, उसके बाहर कर्मकांड ज्ञानकांड में फंसने की संभावना है। कोई भी वैदिक शास्त्र नहीं, क्योंकि वैदिक शास्त्र में कर्मकांड भी वर्णन है, 90% तो कर्मकांड है और बाकी जो बचा उपनिषद सब ज्ञान कांड है। गिने चुने जगह पे भक्ति का वर्णन है, गिने चुने, ऐसा छींटे मारे हुए हैं सब वेदों में। वेदों में केवल 90% तो कर्मकांड है, उसमें बाकी थोड़ा परसेंट 8% तो पूरा ज्ञान कांड है, कहीं थोड़ा भक्ति की छींटे मारे हुए। इसीलिए व्यास देव संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए नारद मुनि ने उनको बोला अभी एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें धर्म प्रोज्जित कैतव, सारा कैतव कर्मकांड ज्ञानकांड लात मार के निकालो, शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाव, ऐसा नाव जिसको पकड़ा तुरंत पार करेगा। ये दो ही ऐसे ग्रंथ है, गीता और भागवत। गीता भगवान के मुख से निकला हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, माम एव ये प्रपद्यन्ते, और किसी का नहीं। और भागवतम, तो गीता और भागवत जो है ये वैदिक ग्रंथों को उबाल के उबाल के उबाल के उसमें से सारे अवांछित चीजों को, कर्मकांड, ज्ञानकांड, सकली विषेर भांड, विष का प्याला है वो कर्मकांड और ज्ञानकांड। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कर्मकांड, ज्ञानकांड, सकली विषेर भांड, विषय का विष का बर्तन है वो, अमृत बोलिया जेवा खाए, उसको अमृत समझकर लोग पी रहे हैं। मैं ये पूजा कर रहा हूं, इसकी पूजा कर रहा हूं, इसकी पूजा कर रहा हूं, इससे मेरे को लॉटरी लगेगा, इससे अच्छी पत्नी मिलेगी, इससे मेरे को अच्छे बच्चे मिलेंगे, इससे मेरे को यश मिलेगा, ये सब मिलेगा, पर उसको पकड़ के इधर ही टिके रहोगे तुम, डूबते रहोगे। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मान स्वर्गपरा। काम वासना को तृप्त करने के लिए वैदों का आश्रय ले रहे, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राम, इन सब को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड का, वेदों का उपयोग करके कामात्मान स्वर्ग परा। क्यों कर रहे हो? मैं अच्छा काम करूंगा, दान दूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य खत्म हो जाएगा, वापस आ जाओगे। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, फिर से जन्म, फिर से कर्म, फिर से अटकना। तो कर्मकांड, ज्ञानकांड, सकली विषेर भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, कोई अमृत समझ के वो पीता है, नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, उल्टे सीधे चीज खाते हुए 84 लाख में भटकता रहेगा। तार गति अध पथ जाए, उसका पतन होते रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो आचार्य संप्रदाय में जो दिया गया ज्ञान है, भक्ति रसामृत सिंधु हो, अब भक्ति रसामृत सिंधु में देखो 99% केवल भागवतम के श्लोकों का वर्णन है, और इधर उधर से जो छींटे मारे हुए पद्म पुराण का है, थोड़ा इधर उधर से विष्णु पुराण का है, इधर उधर से दूसरे पुराणों का है, केवल उसमें से शुद्ध भक्ति का एक दो श्लोक है उतना ही निकाला है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि ने, पद्म पुराण का श्लोक है ये, उतना ही लिया, पूरा पद्म पुराण का कहानी नहीं लिया, क्योंकि उसकी जो रचना की वो भी संतुष्ट नहीं थे व्यासदेव। तो हमें समझना चाहिए पूरे वैदिक ग्रंथ भी आचार्यों का ये देन नहीं है, जो गुरु परंपरा में आए हुए संप्रदाय का आचार्य हैं। इसको भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर से 10 श्लोक लिखे हैं, केवल 10 श्लोकों में, जैसा उपदेशामृत में 11 श्लोक है, ऐसे वहां बोलते हैं आमनाय आमनाय। आमनाय का मतलब क्या है? पूरे वैदिक वांग्मय में शुद्ध भक्ति की योग्यता जो जो लिखी गई है, केवल उतना ही निकाला है बस, और उतने निकाल के हमें दे दिया गया है, बस इतना ही पढ़ो, पूरे वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों से कृष्ण को जानना है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, भगवान के साथ हमारा संबंध, उसको जागृत करने के लिए भक्ति, और भक्ति करने से प्रेम, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कय, वेदों में केवल 3 वस्तु बताया गया है, भगवान के साथ हमारा संबंध, उसको स्थापन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका भक्ति, और शुद्ध भक्ति करने से प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, ये भागवत कहता है। तो ये जो पुस्तक हम बांट रहे हैं, एक्चुअली हम डूबते व्यक्ति को हम नाव का एक पकड़ा रहे, ये नाव पकड़ो, आप जानो या नहीं जानो, समझो या नहीं समझो, मानो या नहीं मानो, पर जब एक व्यक्ति को हम एक्चुअली पुस्तक दे रहे हैं, भगवान की कृपा, आचार्यों की दया, उनका करुणा से लिखा हुआ बनाया हुआ बोट नाव, वो नाव को हम हाथ पकड़ा रहे, तू भी पकड़ ली, ये भी नाव पकड़ तू, तो नाव तो पकड़ा देते उसको, उसको नाव पकड़ा के तुम खूब डूब मत जाना, सबको नाव पकड़ा दिया और तू भाभी नहीं है मेरे पास। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कंप्लेंट यही था, तुम लोग अच्छे तरह से बांटते हो, कोई पढ़ता ही नहीं है पुस्तक मेरा। मेरा कंप्लेंट यही है कि लोग मेरे पुस्तक बांटते हैं बहुत अच्छे से, बड़ा बड़ा स्कोर दिखाते हैं, खुद पढ़ते नहीं है। चांगली पुस्तक है, वाचा काय यामध्ये, तुम्ही वाचा, मला माहिती नाही, तुम्ही वाचा, त्याच्यासाठी मी देतो तुम्हाला, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी पूछे, कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको पूछता है ना, प्रभु जी ये मैं भागवतम पढ़ रहा हूं, एक शंका, अभी मेरे को टाइम नहीं है, पूछो मत। यानी अच्छा खासा व्यक्ति जो आश्रय लेने का प्रयास कर रहा है उसको नकार दिया। तो एक रूप से देखा जाए, जैसा यहां प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से लिखते हैं, आप थोड़ा ध्यान कीजिए, कहते हैं अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वे ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रानुमोदित भक्ति कर सके। देश काल पात्र के अनुसार आचार्य सोचते रहते, हमेशा उनका चिंता रहता है, अरे कितने लोग डूब रहे हैं, कितने लोग डूब रहे हैं, इनको नाव में चढ़ाना चाहिए। चढ़ाना एक बात है, चढ़ाने के बाद यह भी देखना है कि वहां से छलांग नहीं मारे बाद में वापस, पर लोग दुर्भाग्यवश छलांग मार देते, वो नाव पहुंचने से पहले छलांग मार देते, 10-10 साल बैठ के फिर छलांग मार देते, अभी आने वाला है छलांग मार दिया। हम देखते हैं कितने लोग संडे फिश प्रोग्राम के बाद, कितने लोग नए लोग, सब लोग खड़े हो जाइए 3 बार हरि बोल, अगर सब टिक जाते नाव में तो ये मंदिर छोटा पड़ जाता 1 साल के अंदर, पर हरि बोल बोलते हैं अगले हफ्ता हरि बोल हो जाता हूं। मुश्किल है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भीमम सुदुस्तरम, उनको क्या लगता है, अरे क्या फर्स्ट क्लास है, हम लोग खुशी है, हर रोज खाते पीते हैं, अच्छा है, आप क्या बोल रहे हो, भीमम सुदुस्तरम फर्स्ट क्लास, आनंद करो महाराज, क्या टाइम पास कर रहे हो, जीवन बर्बाद कर रहे हो, भोग करो, बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे दिसंबर में हम लोग पूरा प्रयास करते हैं पुस्तक देने के लिए, पर सचमुच में उन पुस्तकों को उठाकर पढ़ने के लिए प्रेरणा करना भी पुस्तक वितरण है। उसके बाद एक कुछ ऐसा एक कोर्स करके, गीता कोर्स करके आओ, सुनो 6 दिन, सुनने के बाद उस पुस्तकों को पढ़ो, जो घर में जैसे आए तशी रखे हो ना, उसको उठा के पढ़ो, वो भी पुस्तक वितरण है, वो भी पुस्तक वितरण है। और आज यहां हर संडे को हम लोग यहां आके बैठते हैं, एक्चुअली ये भी पुस्तक वितरण है। कब तक ये पुस्तक वितरण चलेगा, जब तक हम भगवत धाम नहीं पहुंचे तब तक जो भी कार्य होता है वो पुस्तक वितरण ही, सब पुस्तक वितरण ही है। क्यों पुस्तक दे रहे हैं, क्यों नाव दे रहे हैं, समुद्र को पार करो, पार नहीं किया तो नाव देके क्या फायदा, नाव पकड़ के क्या फायदा अगर पार नहीं हुआ तो। तो हम लोग क्यों, प्रभुपाद ने जो नियम बनाया है, श्लोक पढ़ो, एक श्लोक का तात्पर्य और उस पर चर्चा करो ताकि आपको प्रेरणा मिले, हाँ कौन से अध्याय, कौन सा, अच्छा मैं भी भागवतम में जाके दशम स्कंद का यह अध्याय निकाल के पढ़ूंगा, प्रेरित करने के लिए कि आप उस शास्त्र का आश्रय लो, शास्त्र अनुमोदित जो वाक्य हैं उसके अनुसार चलो, शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे। यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता के 16वें अध्याय में लास्ट श्लोक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के आधार पर हमको करना चाहिए, पुस्तक ही आधार, प्रभुपाद ने कहा, राइट, बुक्स आर द बेसिस। हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे रहन सहन, ये सब शास्त्र के अनुसार। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है। हमारा विचार ऐसा क्यों है? क्योंकि शास्त्र कहता है। यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य, अगर आप इस नाव को फेंक दोगे, धकेल दोगे साइड में, बगल में, यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य, विधि को छोड़ दोगे, वर्तते कामकारतः, अपनी इच्छा से मनमानी, नहीं नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कहा है, कुछ विद्वान ने मेरे को ऐसा बताया है, वर्तते कामकारतः, अपनी स्वेच्छा से करोगे, मन या अपनी बुद्धि के अनुसार करोगे, नस सिद्धि मवाप्नोति, जिस कार्य में तुले हुए हो उस कार्य की सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी, न सुखम, सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा, और पराम गति, परम गति भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है, ये शास्त्र का मतलब है। और ये जो मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर का उद्देश्य ही है, ये कार्यक्रमों का उद्देश्य ही है, ये उत्सवों का उद्देश्य यही है, ताकि हमेशा हम लोग शास्त्र के ऊपर चर्चा करते। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया, भागवत में ऐसा कहा गया, गीता में ऐसा कहा गया, और उसको विस्तृत से समझाते हैं। और ये शास्त्र का समझ जो है, ये वाचलमी झाला, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ये एक बार पढ़ने से कम समझ में आता है कहां कहां क्या है, वो भी भूल जाते हैं हम लोग चार दिन के बाद। न केवल इसको पढ़ना, बल्कि इसको समझने का प्रयास करना, परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया, समझने के बाद उसको प्रामाणिकता से, पूरी प्रयास से उतारने का प्रयास करना। जब उतारेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा नाव आगे बढ़ रहा है। तो ये तरीका है, ये पुस्तक तरीका है। कभी कभी क्या हो जाता है, एक संस्था में शुरू शुरू में थोड़ा एक कनिष्ठ अधिकारी भक्त अगर ज्यादा हैं, तो वहां क्या हो जाता है, पुस्तक वितरण अच्छा है, थोड़ा एक कंपटीशन स्पिरिट। जनरली हम लोग क्यों पुस्तक वितरण कर रहे हैं, अब क्या है, प्रभु जी ने बोला कम से कम 100 करने का एक टारगेट दे दिया, अच्छा है टारगेट, पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए। इस्कॉन के इतिहास में आप पढ़ेंगे, अमेरिका में लाखों पुस्तकें गई प्रभुपाद के समय में, लाखों पुस्तकें, पर आज अमेरिका में बहुत ही कम मंदिर हैं, और उन मंदिरों में अमेरिकन कोई है ही नहीं, जो भी है भारतीय लोग, गुजराती लोग इधर उधर है थोड़े बस। कहां गए वो सारे पुस्तक, कहां गए वो पुस्तक वितरण करने वाले, नाव सबको दिया पर अगर हम खुद फिसल गए तो फिर क्या फायदा, उस पुस्तक के आधार पर अगर हम नहीं चल रहे हैं, समझे नहीं है गहराई में, उतारे नहीं है, तो क्या फायदा। हम प्रभुपाद के समय में ही पढ़ते हैं, कभी कभी पुस्तक वितरण के चक्कर में भक्तों के प्रति तनाव आ जाता है, तो फिर वो असफल रहा। राधा दामोदर विलास, हम पढ़ते हैं, राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी बहुत प्रसिद्ध थी, ऐसे पुस्तक वितरण करते थे वो, और किसको भी पकड़ देते ऐसा शेविंग करके अंदर ला देते, ऐसा भक्त बनाने में, पुस्तक वितरण करने में, हजारों पुस्तक प्रैक्टिकली हर रोज, और हर बार आते थे तो दो तीन भक्त बना के लाते थे बस में, ऐसे पकड़ पकड़ के यशस्वी था। बड़े बड़े बस आप देखेंगे, वो प्रभुपाद जी का पिक्चर है, न्यूयॉर्क का बड़ा बिल्डिंग माला, पूरा मंदिर बना था उस समय उसी पैसे से, पुस्तक वितरण के पैसे से, और 10 बस ऐसे खड़े हुए, बड़े बड़े बस जिनमें सोने का भी जगह है, पुस्तक रखने का जगह है, बेडरूम जैसा, उतना बड़ा बड़ा बस, अमेरिका के सड़क में जाने वाले 10 बस थे, और ऐसे 100 या 150 भक्त लोग बैठे हुए, बीच में प्रभुपाद बैठे हुए। तो ये सन्यासी लोग क्या करते थे, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग जाके प्रचार करते थे, और गृहस्थ लोग मंदिर संभालते थे। उस समय का नियम ऐसा था, गृहस्थ लोग जनरली संभालते थे मंदिर, और ये लोग जाते थे। तो ये सन्यासी लोग आते थे, बस लेके आते थे, और कोई मंदिर में आया तो मंदिर में वो जो नए नए ब्रह्मचारी कुछ बने हुए हैं मंदिर में, उन लोगों को बोलते थे मंदिर में रहना माया है, चल हमारे साथ, प्रभुपाद को पुस्तक वितरण अच्छा लगता है, चल उसको भी पकड़ के ले जाए। हर मंदिर में जाते 3-4 ब्रह्मचारी को उठा के ले चले जाते, और ये गृहस्थ बेचारे बड़े मुश्किल से किसी तरह से उनको भक्त बना के बैठा है, और महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं मंदिर में, लोग ले जाते थे। तो आपस में आप पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत में, सन्यासियों में और गृहस्थों में तनाव आ गया, बहुत बड़ा तनाव आ गया आपस में, और इसे द्वेष, हमको नहीं चाहिए ये व्यक्ति हमारे मंदिर में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आता है तो तहलका मचा देता है, कुछ भी तब समस्या हो जाता है। और वो लोग कहते कि ये सब माया में है, हम ही लोग एक्चुअली असली प्रचार कर रहे हैं, ये लोग सब एक ही जगह बैठ रहे थे, हम ही लोग तो भक्त बना के लाते। तो प्रभुपाद ने उस समय जीवीसियों को बोला आप संभालो, पर जब देखा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, एक ही दिन में पूरा पूरा राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी बंद करा दी। यशस्वी प्रोजेक्ट, बहुत यशस्वी प्रोजेक्ट, पर अगर उस प्रोजेक्ट के चलते भक्त में आपस में प्रेम नहीं है, भक्त में आपस में कंपटीशन हो रहा है, तनाव आ रहा है संबंधों में, आपस में प्रेम में ही संबंध नहीं है, तो बोले प्रोजेक्ट बंद करो, कितना भी यशस्वी हो वो यशस्वी नहीं है। पुस्तक वितरण का मतलब है, इट इज ए कंबाइंड एफर्ट, जो भी पुस्तक वितरण हुआ है हमें समझना चाहिए ये पूरे कांग्रीगेशन का प्रयास है, क्योंकि हमको प्रेरणा कहां से मिली, प्रवचन सुन के मिला, भक्तों को देख के मिला, दूसरे भक्तों को देख के मिला, हम कैसे बोल सकते, हमने सिर्फ अंत में पुस्तक दिया उस व्यक्ति को, हाँ वो यश हमारा है, वो श्रेय हमारा है, हमने अंत में उसको दिया, पर पुस्तक छापने वाले, पुस्तक को गोडाउन में रखने वाले, उठा के गाड़ी में डालने वाले, उसको ट्रांसपोर्ट करके यहां लाने वाले, उसका अकाउंट रखने वाले, क्या वो पुस्तक में भाग नहीं ले रहे? जो एकदम कम अनुभवी वाले प्रेक्षक हैं, वो जब एक नाटक को देखते हैं तो केवल जो नाटक कर रहा है, जो हीरो है, उसका गुणगान करते हैं, पर जो लोग बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं नाटक के फील्ड में, कोई भी पिक्चर होने के बाद आप देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर देख के जैसा वो लास्ट एंड आया तो समझो उठ के जाते रहते लोग, पर जो लोग बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, अच्छा पिक्चर लगा, आप देखेंगे पिक्चर के बाद सब आता है, आर्ट डायरेक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, वो लोग सब देखते वाह क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने बहुत अच्छा से डायरेक्ट किया, इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया, तभी ये हो रहा है। तो इस तरह से निश्चय हम उन लोगों को गुणगान करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि आपने तकलीफ उठाकर जाके दिया, पर क्या ये संदेश आपका संदेश है? वो संदेश देने वाले किसने, और क्या प्रभुपाद ने अपना दिया? हाँ अपना भी दिया है, अपना भक्ति वेदांत पर्पोर्ट्स, पर वो अपना श्रेय गुरु को देते हैं, और वो अपने गुरु को कृष्ण को जाता है अल्टीमेटली। तो इट्स ए कंबाइंड एफर्ट, जैसा मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था परसों, हम लोग जब अमृतसर गए थे तो वहां हमने क्या 25 करोड़ का कुछ मशीन है उनका, चपाती बनाने का मशीन, एक कमरा जितना बड़ा, इतना बड़ा मंदिर जितना बड़ा, एक जगह में सिर्फ आटा डालो और पानी डालो और नमक थोड़ा डाल दो, बस तेल तेल थोड़ा डालो तो अंदर जाता है वो, और एक मशीन उसको खस फुस करके एकदम बना बना के गोला बनाता है, बड़ा गोला, और वो बड़ा गोला ऐसा घुसता है एक टनल जैसा, उसमें से एक ऐसा लंबा हो जाता है वो आटा, उसको बाद में दूसरा मशीन ठक 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 काटता है, छोटा 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 पीस बनाता है, और दूसरा उसको दबा के गोला बनाता है, तीसरा उसको ऐसा जोर से मारता है वो चपाती बन जाता है, जो रोटी जैसा फ्लैट हो जाता है, फिर ऐसा जाता है ऐसा और उसको काटता है परफेक्टली राउंड, बाकी निकाल के फिर से इधर डाल देता है, बाकी छोटा मोटा परफेक्ट सर्कल जाता है। उसके बाद एक ऐसा 15 फुट लंबा एक लोहे का तवा, और नीचे से आग लगा है, पूरा आग लगा हुआ है, और ऊपर से ऐसा फुस करके आग लग रहा है, तो 15 फुट वो चपाती ऐसा जाता है, मतलब नीचे का पक जाता है, फिर 15 फुट के बाद ऐसा ऐसा उल्टा करता है उसको, और 15 फुट उल्टा जाता है, दूसरा साइड भी पक जाता है, उसके बाद लास्ट में ऐसा एक छोटा सा ही बना है, उसमें से निकलता है बस, कुछ काम नहीं, इधर से आटा डालो उधर से चपाती लेते रहो बस, 1 मिनट में कम से कम 30 चप, 2-2 सेकंड में एक एक आता रहता है, 2-2 सेकंड थर 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 भर जाता है, थप्पी थप्पी लेके बांटते रहते हो, लंगर होता है उनका, होता बहुत बड़ा, लोग आते रहते 24 घंटे। तो ये हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लास्ट वाला जो भरते हैं ना, सिर्फ आप उसको देखोगे क्या चपाती आ रहा है, पर आएगा कहां से, अगर वहां से वो आटा नहीं डाला, बीच में उसको गोला नहीं बनाया, उसको काटा नहीं, उसको भेजा नहीं, उसको पकाया नहीं, तो आएगा सिर्फ इसको देख के क्या निकल रहा है, वांछा कल्पत रूप है, जो इच्छा उतना चपाती मिल रहा है, अच्छी बात है, पर समझना चाहिए कि बहुत बड़ा लंबा ये सर्कल है, भक्तों का आशीर्वाद है, वरिष्ठों की कृपा है, प्रार्थना है, तभी हम दे पा रहे हैं। तो इस तरह से ये यश जो है ये एक्चुअली सभी का है। ऑफ कोर्स एक वैष्णव समाज में हर एक व्यक्ति को होता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने किया, अब वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ दिया, ये नहीं होते वो नहीं होते तो शायद नहीं होता, ये एक खासियत है वैष्णव समाज का, समझ में ही नहीं आता है कौन क्या किया, बाहर के लोग जब आते हैं वैष्णव समाज में आते हैं वो तो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, है मैंने नहीं किया, तू नहीं मैंने नहीं किया, फिर किसने किया भाई ये, क्योंकि बाहर के समाज में हर एक व्यक्ति बोलता मैंने किया, बोलते नहीं नहीं मैंने, इन सब की कृपा है। तो ये पुस्तक वितरण जो है नाव का लेना, ये बहुत लंबा है, कब तक है, जब तक भगवत धाम नहीं जाते। सच्ची बताइए आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता जशी आहे तशी, इस कवर से लेकर उस कवर तक पूरा एक बार पढ़ा है, हाथ उठाइए, बड़े प्रामाणिक हैं आप लोग, कितने लोगों ने भागवतम पूरे 12 स्कंद, पहला स्कंद का इधर से लास्ट स्कंद का इधर तक पूरा एक बार पढ़ा, एक बार कम से कम। हरे कृष्ण, 1, 2, 3, 4, 4.5, इतने ही उठा रहे हो, मतलब 6 स्कंद अभी तक हुआ है, 12 स्कंद होगा तो ऐसा है। तो ये भी जरूरी है, हम बोलते हैं ना जय प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय, कृपा, अरे कृपा दिए पर उसको लेना चाहिए ना। तो मेरी नम्र विनती है, अगले दिसंबर मैराथन से पहले, यानी मेरे द्वारा भी कुछ कुछ पुस्तक वितरण हो जाएगा अभी, अगर गीता नहीं है तो गीता खरीद के एक कवर से दूसरा कवर पढ़िए, और अगर वो हो गया है तो भागवतम लीजिए, बड़ा चैलेंज है, पर कम से कम एक बार प्रयास कीजिए। आपको लगेगा कि नहीं 12 स्कंद ऐसा देख के ही डर लग जाता है, जिंदगी में कभी होगा नहीं। तो एक भक्त ने ऐसा किया, उसने निर्णय लिया कि एक महीने में मैं खत्म करूंगा, ये क्या 2 महीने। उन्होंने क्या किया, बोला वो डर हटाने के लिए सिर्फ अनुवाद पढ़ के खत्म करूंगा, कहां क्या है इतना तो समझ में आएगा, उसके बाद जहां जहां चाहिए वहां घुसूंगा मैं, थोड़ा गहराई में, तात्पर्य में। अभी तो 2-3 पुस्तकें आई हैं, श्रीमद् भागवतम कंडेंस्ड। बंबई में एक भक्त हैं, हाँ वो बता रहे थे, पूर्ण प्रज्ञ प्रभु बोल के एक भक्त हैं, उन्होंने चैतन्य चरितामृत कंडेंस्ड संक्षिप्त रूप में आया है, मतलब फिलॉसफी नहीं, सिर्फ कथा, कहां से कहां गई है वो, कहां कहां क्या क्या है, ये स्कंद में क्या है, ये स्कंद में क्या है, ये स्कंद में क्या है, सिर्फ बता दिया उसको। वो पूरा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस आया, अरे बाप रे, मैं समझता था जिंदगी में कभी भागवतम खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैंने एक बार भागवतम पूरा पढ़ के खत्म किया। और अभी पढ़ने के बाद 2 चीज हुई, एक पूरा भागवतम पढ़ने का धड़स, क्या बोलते हैं, साहस हुआ, कॉन्फिडेंस आया, और दूसरा अभी उनको पढ़ने का आदत पड़ गया है, कुछ भी हो 20 मिनट पढ़ते ही हैं वो। प्रभुपाद के प्रति अगर कृतज्ञता दिखाना है तो जिस पुस्तक, और सचमुच में हमारी भलाई है इसमें, क्या बोलेंगे अगर हम समझेंगे नहीं या उतारेंगे नहीं, तो बोलने में शक्ति आएगी जब उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे, और उसका आस्वादन लेना चाहिए। जब तक ये आस्वादन नहीं आएगी, परम दृष्ट्वा अनिवर्तते, फिर भक्ति में माला हो या भक्ति हो, भक्तों का संग हो, बोझा लगने लगता है। अभी कौन इतना दूर जाएगा, अभी कौन इतना माला उतारेगा नीचे, बोझा लगने लगता है। इतने सालों के बाद भी अगर रुचि नहीं हो, कभी कभी हम सुनते हैं और देखते हैं कि इतने सालों से भक्ति किए हुए लोग किसी कारणवश निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के संस्था आंदोलन में भी हम देखते हैं, क्यों ऐसे हो गया, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, पर देने के लिए कुछ होना चाहिए ना, देने के लिए होगा तभी तो देंगे। कुएं से पानी दे रहे हैं पर पानी भरना भी चाहिए तभी तो देंगे। भरने का समय क्या है, हमारा साधना, श्रवण और कीर्तन, अध्ययन, नित्यम भागवत सेवया। तो ये पुस्तक वितरण है, और आप जानिए, आप जब पुस्तक पढ़ रहे हो आप पुस्तक वितरण कर रहे हो, वो भी पुस्तक वितरण है, क्योंकि आप जो पढ़ोगे, आप लोगों को बोलोगे, बोलने के बाद उनको इच्छा होगी पुस्तक लेने के लिए, अगर लिए के रखा है तो खोलने के लिए, अगर खोला है तो पढ़ने के लिए, और पढ़ा है समझने के लिए, अगर समझा है तो उतारने के लिए, उत्साह बढ़ेगा, वो पुस्तक वितरण है। नहीं तो अगर रखे, ठीक है ये भी हम कहते हैं, हाँ जो भी स्पर्श किया उसका भक्ति शुरू हो गया, जिसके घर में है कम से कम, वो अच्छी बात है। हमने भी चाहे कहीं कहीं जन्मे रखा होगा शायद, पर हमको उसमें से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है दिसंबर में 1 महीना बांट रहे, पर 11 महीना तो इकट्ठा करो, तो ये बहुत जरूरी है, ये भी एक पुस्तक वितरण है, और निश्चित रूप से प्रभुपाद जी को ये प्रसन्न करेगा। और फिर क्योंकि हम आश्रय ले रहे हैं पुस्तक पढ़ने, कभी कभी एक कंप्लेंट आता है लोगों का, प्रभु जी कुछ समझता ही नहीं है, पुस्तक पढ़ने के बाद पूछोगे ना क्या पढ़ा, पर पढ़ते वक्त समझ में आता है थोड़ा बहुत, पर भूल जाता है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आश्रय लो। डूबता व्यक्ति कैसा रस्सी को पकड़ता है, ऐसा आश्रय लो, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे बोला गया है, बस 20 मिनट पढ़ूंगा, दिमाग में जाए या नहीं जाए। वो दक्षिण भारत का ब्राह्मण, गुरु ने बोला था तू भगवत गीता पढ़, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ रहा है, महाप्रभु प्रसन्न हुए, बोले तू सार समझ गया है, गीता का सार समझ गया है तू। तो वो प्रयास जब करेंगे पढ़ने का, तो क्या होता है, जब कृष्ण से अभिन्न है पुस्तक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव, जब भगवान देखते हैं कि बेचारा प्रयास कर रहा है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अंदर से उसको बुद्धि दूंगा, उसको ज्ञान दूंगा, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ पाएगा। तो ये पुस्तक जो है पढ़ने के लिए, हमारे लिए दिया गया है। आचार्यों ने पार करके बड़े कृपा पूर्वक हमें मैप दिया है। हम बड़े लंबी क्या बोलते हैं, लंबा जर्नी, एक यात्रा में निकले और हमको मैप दिया, ये लो ये देखते रहना कहां पहुंचा है, कहां जाने का है तुझे, कहां मत जाना, कहां मत ठहरना, कहां ठहरना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो वृंदावन जा रहा है, एक काम कर, वो रिक्शा में मत जाना, वो लोग लूटते हैं वो लोग, तो इधर से जाना, ये ट्रेन लेना, वहां से शॉर्टकट में मिल जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, और ये होटल में मत जाना, वहां ज्यादा चार्जिंग होता है, इधर जाना। तो एक व्यक्ति जो गया हुआ है आके बताता है, उसके अनुसार चलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। इस तरह से बना बनाया राजमार्ग है, राजमार्ग है, इसमें कर्म कांड नहीं है, ज्ञान कांड नहीं है, शुद्ध भक्ति मार्ग है। और इतना सरल से दिया है, कोई भी इसको लेके भगवत धाम जा सकता है और साथ में लोगों को ले जा सकता है। तो इस तरह से ये पुस्तक हमने बांटा है एक महीना, पर अभी हमारा प्रण ये होना चाहिए कभी इसको अच्छी तरह से हम खोलेंगे, अगर नहीं है घर में तो लाएंगे सबसे पहले, अगर ला के रखे हैं तो प्लास्टिक निकालेंगे। कई बार किसी के घर में मैं जाता हूं, भागवतम है क्या प्रभु जी, हाँ है ना, लाते फाड़ना पड़ता है प्लास्टिक को, पहला स्कंद खोला है बस, वो सिर्फ देखने के लिए, साइन डालने के लिए, अपना नाम लिखने के लिए। तो लाया है तो खोलो, बीच में कभी खोला है तो पढ़ो, अगर पढ़ा है तो समझने का प्रयास करो, और समझ में आ गया है तो उतारो, और उतार लिया है तो बांटना शुरू करो। आप कहीं भी हो चालू करो, आगे बढ़ो, और जितना बांटेंगे उतना हमें मिलेगा, ये आध्यात्मिक गणित है। जितना आप दूसरों को बोलोगे, जो सुनो वो बोलो, जितना बोलोगे उतना आपका समझ जो है ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से पुस्तक वितरण केवल देने के लिए नहीं और दिसंबर में नहीं, ये हमारा 365 दिन का आजीवन सेवा है, और ये हमें एक मध्यम अधिकारी के स्तर पर लाता है। ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेश, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, कृपा दिखाने का तरीका है। अब पहले अपने ऊपर कृपा करो, इस कृपा जो दे रहे हैं उसको स्वीकार करो, और फिर दूसरों को बांटो। फिर कनिष्ठ अधिकारी भटक सकता है, मध्यम अधिकारी कम से कम भटकेगा नहीं, क्योंकि प्रेम है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति घनिष्ठ मैत्री है, आश्रय लिया है भक्तों का, और कृपा दिखा रहा है, यानी भगवान के शुद्ध भक्तों का जो आंदोलन है उसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन, हमारे अंदर दया नहीं है पर उस दया के एक भाग बन रहे हैं। और फिर उपेक्षा, ऐसे व्यक्तियों से उपेक्षा जो निंदक है, जो नास्तिक है, उनसे एकदम घनिष्ठ संबंध नहीं, दूर से प्रणाम, प्रसाद दे दो बस, तब हम मध्यम स्तर पर आ जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री निताय गौर चंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।